राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 14 मई 1993 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में संपन्न हुआ। राम।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
रुद्राक्ष है, वृक्ष होता है, उसे बीज होते हैं, फल होते हैं। रुद्राक्ष के फल, रुद्राक्ष का बीज होता है, वृक्ष होता है। नेपाल में है, हमने देखा है, वृक्ष होता है। हरिद्वार में बताते हैं कोई, तो वृक्ष होता है, वृक्ष के फल लगते हैं। वो फल ऊपर से तो खा लेते हैं, ऊपर खाने वाले छोकरा, और भीतर में वो बेर के बीच में जैसे गुठली निकलती है, ऐसे गुठली निकलती है, उसको रुद्राक्ष कहते हैं। छेद होता है, आप साफ छेद होता है, गुठली होती है। असली होता है वो डूब जाता है, नकली होता है तिल जाता है पानी में। वास्तव परिषद क्या हो, आजकल नकली ऐसे ऐसे बनाते हैं बढ़िया बढ़िया। लाभ ब्लड प्रेशर ठीक होता है, ये तो रूप का है, और भगवान शंकर घोष होते हैं। शंकर शक्ति गणेश तीनों के लिए ये लाल मूंगा की माला है, रुद्राक्ष की माला है, ये सेठ होती है। शक्ति के लिए मुंगों की माला को भी बताई, भगवान विष्णु के लिए राम कृष्ण के लिए तुलसी की माला। नारायण नारायण नारायण। और बोलो ना, बोलो हमारा अच्छा रहेगा।
साधक की एक इच्छा रहती है मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए।
हाँ।
और कहा कि ऊंची से ऊंची अवस्था में ये भावना उस अवस्था में भी रहती है।
हाँ।
इधर आप फरमाते हैं कि अपना कल्याण हो न हो, इधर विचार न करके अपने साधन में लगे रहना चाहिए। तो ये अपने कल्याण की, अपने उद्धार की इच्छा, जिसको आप अच्छा नहीं मानते हैं, किस कारण से?
वो यहाँ की व्यक्तिगत लाभ है ना, मेरी मुक्ति हो जाए, ये व्यक्तिगत लाभ है। तो व्यक्ति बनी रहेगी, व्यक्तित्व टूटेगा नहीं। मेरे वो लाभ हो जाए तो बंधन व्यक्तित्व तो है बंधन। एक देश में अपने को मानना यही बोध है, यही बंधन है। वो कहता है कि मेरी मुक्ति हो जाए, तो मेरी मुक्ति चाहता तो एक देश को दृढ़ करता है ना, अपने एक देश को दृढ़ करता है मेरी मुक्ति हो जाए। तो एक देश को दृढ़ करने से कल्याण कैसे होगा? परंतु भगवान की कृपा है, जो अपना कल्याण चाहते उसका भी कल्याण होता है। नीति अवस्था इस बात बताई कि वो समझता नहीं है तत्व को, इस वास्ते अपने कल्याण के लिए काम करता है। तत्व को समझने पर अपने लिए नहीं होगा, भगवान के लिए होता है, जनता के लिए होता है। व्यक्तित्व रहता है ना, इसमें शंका करो कोई? मेरा कल्याण हो जाए इसमें तो रहता है कि नहीं। अरे व्यक्ति तो बात ही और बात क्या है, परमात्मा तो तू तो सब जगह परिपूर्ण है ही। एक देश में अपना व्यक्तित्व है यही वर्ष में मुक्ति होने में बाधा देता है, और यही अपने की मुक्ति हो जाए अपनी मेरी मेरी तो मैं अपना ठीक दिल रुआ कर नहीं। शंका करो खूब इसमें क्या
मेरी मुक्ति हो जाए ये भाव में रख करके क्या रखना चाहिए भाव साधु का।
भगवान प्रसन्न हो जाए ये रखे, दुनिया का कल्याण हो जाए रखे, सब कल्याण सबका दुनिया कल्याण हो जाए और भगवान की प्रसन्नता हो, भोग प्रीति सब। ये बहुत अच्छा प्रण किया कि मेरी मुक्ति हो जाए तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। वो ये चाहता है मेरी मुक्ति हो, भजन ध्यान करता है, साधन करता है तत्परता से, तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। परंतु ये भावना अच्छी नहीं है, जल्दी मुक्ति नहीं होगी उसकी, क्योंकि मेरी मुक्ति हो जाए मैं हूं एक अपना व्यक्तित्व दृढ़ करता है ना। आप शंका करो इसमें संसार की दुनिया चाहता, पर व्यक्तित्व है कि नहीं ये बताओ। तो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व को दृढ़ करता है फिर संसार क्या होता है? संसार व्यक्ति संसार है और है, संसार से बाहर है क्या व्यक्ति? अपने आप ही करे। इसका अर्थ यह है कि दूसरा कोई उद्धार करने वाला नहीं है, उद्धार अपने को ही करना पड़ेगा अपना। इसे गुरु कर देंगे, एक भगवान कर देंगे, एक दुनिया कर देंगे, ये बात नहीं है। अपना उद्धार अपने को करना पड़ेगा। अपना ही आप बंधु है, आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। अपना पतन न करे, उत्थान करे। संसार के संसार से अलग मेरी मुक्ति करे ऐसा भाव है, यही तो बंधन है। और बंधन क्या है आप बताओ? जो वेदांत पढ़े हुए हैं, सिद्धांत जानते हैं, अद्वैतवाद मानते हैं, उनको बताओ कि दुनिया से अपने को एक देश में मानकर मेरी मुक्ति हो जाए, क्या उसको तत्व ज्ञान होना चाहिए? आप बताओ। तो मेरे भाव व्यक्तित्व और क्या संसार तो है व्यक्तित्व, व्यक्तित्व संसार ही तो है। क्या संसार पाने से व्यक्तित्व अलग है? साधु के कहां कहां कचास रहती है इसका ख्याल अच्छे से विद्वान भी नहीं करते, पढ़े लिखे अच्छे पंडित भी ख्याल नहीं करते। कहां बाधा होती, क्या बाधा होती, ख्याल नहीं।
व्यक्तित्व कैसे मिटे?
व्यक्तित्व मिटे सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबकी मुक्ति हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, इस भाव से ये भाव अच्छा। अथवा भगवान की प्रसन्नता, भगवत प्रीत्यर्थ काम करे, जो कुछ करे भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। खूब आप भाई बहन सोचो इन बातों को, केवल मेरे कहने से मान लेना, मैं आग्रह नहीं है मेरा। आप इन बातों पर विचार करो।
युक्ति आपकी सही होती है तब मानते हैं, वैसे कहने की बात नहीं है।
हम देते युक्ति, हम तो युक्ति हम तीनों देते हैं, श्रुति युक्ति अनुभूति। श्रुति की अनुभूति भरता सकम, हमारे युक्ति मुख्य रहती है, क्योंकि आजकल का जमाना श्रुति को नहीं मानता, सात को नहीं मानता, इतना युक्ति वो कान पकड़ मानना पड़ता है, मजबूर हो जाए, इस वास्ते युक्ति प्रधान रहते हैं हमारे, और वो शास्त्र सम्मत रहते हैं, शास्त्र सम्मत न हो तो युक्ति काम के नहीं है। तर्कानाम अप्रतिष्ठानात् सूत्र है व्यास जी का, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तर्क है युक्ति है, ये खुद की वो प्रतिष्ठा नहीं है, प्रतिष्ठा शास्त्र की है, आदर्श शास्त्र का है। बोलो, इस पर शंका करो जिधर से, बड़ी गहरी बात है, मामूली बात नहीं है। यद्यपि कुरुते जंतु तत्तत् कामस्य चेष्टितम्, जो कुछ करता है वो कामना की चेष्टा करता है, अपनी कामना पूरी होता है हो जाए, तो मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को मिल जाए, ये भी मेरी मुक्ति हो जाए। ये बात अच्छा अच्छा पंडितों के भी समझ में आती नहीं है, पढ़ाई मैंने की है मेरी समझ में नहीं आई, ये बात मेरे को संतोष मिली है, पढ़ाई कर पंडितों से ये बात समझ नहीं आती, मैंने पढ़ाई की है देखा, विशेष नहीं की तो की तो है कुछ। संत महात्माओं से अनुभवी पुरुषों से जो बात मिलती है वो शास्त्रों से नहीं मिलती, अनुभवी महापुरुषों से मिलने के बाद शास्त्रों में मिलती है, शास्त्रों में है वो बात, परंतु जब तक उस तरफ ध्यान नहीं होता वो पढ़ जाते हैं, कह जाते हैं, सुन जाते हैं, सुना देते हैं, समझते नहीं, और समझना पड़ती है शास्त्रों में, ये तो शास्त्रों में लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ऐसा दिखेगा, साफ दिखेगा। उद्धरे दात्मनात्मान नात्मान अवसादेत आत्मे वैश्यात्मनो बंधु रात्मे रिपुरात्मन, इसका तात्पर्य है कि उद्धार खुद को ही करना पड़ेगा, क्यों कि ये बंधन आपने खुद ने ही किया है, खुद ने जो व्यक्तित्व माना है उसको सुख देने की चाह है, इससे ही आपके बंधन हुआ है, तो बंधन दूसरे का किया हुआ नहीं है, अपना ही बनाया हुआ है, इस वास्ते अपने को इस बंधन से मुक्त होना है, ये तात्पर्य है उसका, व्यक्तित्व से तात्पर्य नहीं है, बंधन दूसरे का किया हुआ नहीं है। अद्वैत सिद्धांत में वर्णन आता है, साक्षी कूटस्थ जो साक्षी है उसकी मुक्ति होती है, और वो जो अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य है वो आभासवाद और अवच्छेदवाद दोनों मानते हैं, तो अवच्छेद अवच्छेदवाद और आभास मानते हैं, उनमें जीव की मुख्यता अवच्छेद अवच्छिन्न होने से है, और आभास प्रतिबिंब होने से है, और प्रतिबिंब करता चेष्टा और मुक्ति होने पर साक्षी रहता है, प्रतिबिंब रहता ही नहीं, ये बात ठीक बैठती नहीं, उद्योग और करे मुक्ति और की हो जाए, और उद्योग करे तो राम जी की नष्ट हो जाए, सफा बोलो बताओ हल्ला मजा सब बोलो
अब आपने कह दिया तो भी पूछ रहे, वो कह रहे वो नहीं जानते थे क्या ये बात की अहमता से परिचन्नता आती, आप ही बता रहे हो वो नहीं जानते थे इस चीज को,
अब जानते थे नहीं जानते थे इसको कौन ठेका है भाई, हमने कही है वो बात, अगर रद्दी हो तो आप काटो मैं मान लूंगा, मेरे आग्रह नहीं है, मैंने तो जो पुस्तकों से पढ़ा है संतों से सुना है उसके अनुसार मैं कहता हूँ, और आप बुद्धि बात बता दो, इतने लोगों में बिल्कुल कान पकड़ मान लो आपका कहना सही है, मेरे को शर्म नहीं आती, आप अच्छी बात कहो युक्ति संगत बात कहो और मेरे समझ में आ जाए तो मेरे शर्म नहीं आती कि मेरी बात कट गई, मेरी बात मैं रखता ही नहीं, फिर क्या कटेगी। मैं तो शास्त्रों की बात संतों की बात सुनी हुई कहता हूँ, मेरे पर लोग आरोप तो ऐसा करते हैं कि स्वामी जी कहते हैं हमारा अनुभव हम ऐसा है, मैं ऐसा प्राय कहता नहीं हूँ। आरोप तो करते हैं लोग कि स्वामी जी शास्त्रों की अपेक्षा अपने अनुभव को विशेष बताते हैं, ना ऐसा नहीं बता। मेरे कहते आपकी मान्यता क्या है, तो मैं तो उत्तर दे भी, मैं क्या चीज हूँ, मेरी मान्यता क्या है। मान्यता शास्त्रों की है, भगवान के वचनों की है, ऋषियों मुनियों की है, वो मान्यता मान्यता है। मेरी मान्यता क्या मूल्य है, विचार करो। वाद प्रबलता हम बोलने वालों में बाद कथा मेरा स्वरूप है। भगवान कहते हैं जल्प वितंडा और बाद तीन तरह की कथा होती है, जल्प कथा होती है, वितंडा कथा होती है, बाद कथा होती है। जल्प वो है जो अपनी बात कही चल जाए, कहते सुने न सुने दूसरों की बात सुन, धीरे धीरे अपनी अपनी बात कही। और वितंडा होता है जो जबरदस्ती अपनी बात सुनाता है, जल्प में अल्दी सुनता तो है। और बाद कथा वो होती है जो अपनी तुम्हारी हमारी बात नहीं, हमें तो तत्व का निर्णय करता है, वो करना है जो आपको अगर वो ठीक है तो हम कहें वो ठीक है, तीसरे आदमी को कहते ठीक हो तो ठीक है। बाद है प्रवक्ता बाद कथा, जल्प कथा, वितंडा कथा, खंड खंड खाती में जो भी सुनाया है। बड़े बड़े ग्रंथों में, बड़े बड़े आचार्यों के वचनों में भी विरोध आता है, ठीक सब बातों का समाधान नहीं होता।
है? जिसने व्यक्तित्व भी स्वीकार किया,
हाँ,
और सारे संसार के साथ एकता करना चाहा,
हाँ,
ये बात समझ में नहीं आई, समझ वाणी की है ही नहीं।
और समझ देखो भाई, आप पूछते हैं कि एक व्यक्ति ने निश्चय किया सारे संसार के साथ एकता हो जाए, करता निश्चय एक है, साधन एक करता है और संसार मात्र का कल्याण हो जाए, ये कैसे बात होती है। एक देश में अपने को मानता है वो कैसे होता है। अब ध्यान दे सुने आप लोग, कृपा करें थोड़ा सा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधव शरीरा। तो शरीर जितने गए संसार है, ये पांच भौतिक तो है क्या, ये अलग अलग है शरीर, एक धातु से बने हुए हैं। स्थूल शरीरों की दृष्टि से देखा जाए तो सबका स्थूल शरीर एक है, ऐसे सबका सूक्ष्म शरीर समष्टि सबका एक है, ऐसे समष्टि कारण शरीर एक है, आत्मा सब में एक है, परमात्मा सब में एक है, भिन्न कहाँ है भिन्नता। समझ में नहीं आती, आपने उद्योग नहीं किया इस विषय को समझने का, परिश्रम नहीं किया। भौतिक दृष्टि से बिल्कुल एक है, पांच भौतिक शरीर है सब, तो एक हुए कि नहीं। समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार, समष्टि मन सब एक ही हुआ। जैसे आपका मन है ऐसे कुत्ते का मन है, गधे का, सुअर का, इनका मन है वो, तो मन मन सब एक है, एक धातु है वो। बुद्धि बुद्धि सबकी एक है, वो एक धातु है। अहम 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 सब में एक है। अज्ञान जो है वो सबकी एक है। जैसे भूख सबकी एक होती है और भोजन करने पर तृप्ति सबकी एक होती है, रुचि अलग अलग होती है, भोजन की रुचि दो की एक नहीं होती, थोड़ा थोड़ा फर्क सब में रहता है, तृप्ति एक होती है। हाँ, विशेष मानी गई तो बुद्धि विशेष मानी गई है, इसका कारण क्या है? मनुष्य में विवेक शक्ति है, बुद्धि है, वो तो जैसे बिजली का लट्टू होता है ना, तो प्रकाश लट्टू का नहीं है, बिजली का है, बिजली से आया प्रकाश, ऐसे बुद्धि में प्रकाश विवेक आया है। विवेक पैदा होता है ये भी बात आती है, और विवेक प्रभु देते हैं ये बात भी होती है, परंतु विवेक खुद अनाती है। अस विवेक जब दिए ही विधाता, पर विधाता देगा। सताम प्रसंगात्म वीर संविदो भवंति हृत कर्ण सायना कथा तोषणा दास भगवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमेशति। ये अनुक्रम से होगा। तो विवेक बिन सत्संग विवेक बिन होई, सत्संग के द्वारा विवेक होता है, ये विवेक पैदा होता है, ऐसी बात भी आती है। मन सूक्ष्म रीति से हम देखा जाए तो विवेक स्वतः है। वो मनुष्य योनि में विवेक विशेष जागृत होता है। यहाँ विवेक जिसमें होता है ऐसे ज्ञान के तंतु है, तो ये मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में पशु पक्षियों की अपेक्षा इसमें ज्ञान तंतु विशेष है। वे तंतु विशेष होने से ज्ञान विवेक इसमें विशेष है। वो विवेक सब जगह मौजूद है, बिजली सब जगह रहती है, पर प्रकाश लट्टू की जगह करती है। ऐसे विवेक सब में है परिपूर्ण, तो पशु पक्षियों में भी विवेक है। वो खाद्य वस्तु वो खाएंगे, अखाद्य होगा नहीं खाएंगे। जैसे आंख है बकरी है हरिणी ये आंख खा रहे गई, पर ऊंट है एक आंख नहीं, भैंस आंख नहीं खाएगा। भैंस के तो आंख लग जाए तो चमड़ा उभर जाए, उसके बहुत चढ़ता है जल्दी आंख भैंस की, वो आंख से अगर खुजाल कर लेती है तो चमड़ा फूल जाएगा। ऐसे बकरी खा लेती है उसकी उधर है। इस पशुओं में ज्ञान शरीर मिला है ना, उसकी निर्वाह मात्र का है, और इस ज्ञान इसमें मनुष्य में इतना विलक्षण है, इतना विलक्षण है जिस कोई महिमा कह नहीं सकता। एक बम से लाखों करोड़ आदमियों का नाश कर सकता है, ऐसी इन पास में बुद्धि है दुरुपयोग करने में, और कल्याण करने में एक ज्ञान से लाखों करोड़ को ज्ञान हो सकता है, मुक्ति हो सकती है, सब दुनिया मात्र का उद्धार हो सकता है, ऐसी शक्ति इसमें है। भला करने की बुरा करने की एक विवेक शक्ति है, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग इसकी महिमा है। महिमा शक्ति की नहीं है, महिमा उपयोग की है। सदुपयोग किया जाए तो बहुत लाभ होता है, उसी शक्ति का भी दुरुपयोग किया जाए, उपयोग खराब किया जाए तो नुकसान होता है, होगा नुकसान। इस वास्ते मनुष्य की शक्ति कम है ज्यादा है इसकी जरूरत नहीं है। मनुष्य प्रायः बुद्धि को भी बढ़ाना चाहता है, रुपये भी बढ़ाना चाहता है, कुटुंब भी बढ़ाना चाहता है, मकान भी बढ़ाना चाहता है, जमीन जायदाद भी बढ़ाना चाहता है। अरे भाई, बढ़ाने की जरूरत नहीं है, है जिसका उपयोग ठीक हो कल्याण हो जाएगा। ज्यादा रुपया खर्च करने वाला का कल्याण हो जाए, रुपया थोड़ा खर्च करे उसका कल्याण नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं है बात। अगर यही बात हो तो रुपया जिसके पास नहीं है उसका तो कल्याण होगा ही नहीं।
पैसा बढ़ाने वाले तो कल्याण के लिए थोड़ा बहुत बढ़ाते हैं, शरीर सुख के लिए बढ़ाते हैं। पैसे को तो ज्यादा इकट्ठा करना चाहते हो, शरीर सुख के लिए करते हो, कल्याण के लिए तो नहीं करते, वो इच्छा ही नहीं।
अब कल्याण किससे होगा वो उनको पता ही नहीं, वो तो कहते हैं रुपया बढ़ाने चाहिए, रुपया आदि हो जाना चाहिए, लखपति करोड़पति अरबपति हम हो जाए, ऐसी धुन होती है।
बता रहे थे सदुपयोग दुरुपयोग की बात, प्रसंग ठीक चल रहा था सदुपयोग
दुरुपयोग की बात। शक्ति ज्यादा हो कम हो इसकी कोई परवाह नहीं, आप में बल कम हो ज्यादा हो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई गणना नहीं है। आपकी समझ तेज हो साधारण हो इसमें कोई फर्क नहीं है, आपकी योग्यता कम हो ज्यादा हो परमात्मा की प्राप्ति में इसकी कोई योग्यता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं है। संसार में है इसकी, पैसा अधिक होता है तो वो धनी माना जाता है, बल अधिक होता है तो बलवान माना जाता है, विद्या अधिक होती तो विद्वान माना जाता है। तो संसार में तो इन बातों की कदर है, इन बातों का महत्व है, पर परमात्मा की प्राप्ति में चलने वालों के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। अधिक पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा, वो विज्ञान वो नहीं होगा, बातों का बहुत सी बातों का ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाए नहीं है। हम तो एक बात और मानते हैं भाई, आप क्षमा करेंगे, ज्यादा पढ़े वो ज्ञान नहीं होता, अधिक विद्वान का, अधिक दरिद्री का, अधिक धनवान का, अधिक निर्बल को बोध नहीं होता, अति पंडित श्रीमान और हो ना आत्मज्ञान, उसको आत्मज्ञान नहीं होता। अरोगी अति दरिद्री को हो देना आत्मज्ञान, अति दरिद्री को, अति रोगी को, अति विद्वान को, अति पंडित को, अति धनी को, इनको ज्ञान है, इनको तत्व ज्ञान नहीं होता। अधिकता ये होती है तो अधिकता होने से संसार में फंसाने वाला अभिमान अधिक होता है। और संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान, अभिमान सकल शोक सब शोक देने वाला है। तो जितनी लौकिक बातें होगी, अधिक पढ़ाई अधिक होगा तो उसकी अभिमान अधिक होगा है। भगवान अभिमान द्वेषित्वाद्यप्तियत्वाच नारदी कहते हैं भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता, खाते करे कृपा ने दूरी, अभिमान दूर करते हैं। तो ये सांसारिक जो बल है अधिक बढ़ाओगे, विद्या बढ़ाओगे तो अपने में अभिमान ज्यादा होगा और अभिमान से पतन होता है। आसुरी संपत्ति सबके सब अभिमान के नीचे रहती है। जैसे मैंने कहा कि कलयुग का निवास बहेड़े के नीचे होता है, बहेड़े वृक्ष के नीचे छाया में कलयुग रहता है, ऐसे अभिमान की छाया में आसुरी संपत्ति पूरी रहती है। और वो अभिमान बढ़ेगा लौकिक विशेष बात होने से, धन होने से, बल होने से, विद्या होने से, बुद्धि होने से, ऊंचा वर्ण होने से, ऊंचा आश्रम होने से, हम साधु हैं ये अभिमान ज्यादा होगा। आश्रम ऊंचा होने से, वर्ण हम ब्राह्मण हैं, नीच नीच सब तिर गए राम भजन लो लीन, जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन। ये बात समझ में नहीं आती है, मैंने प्रयोग करके देखा है। जो साधु बने उनको मैंने कहा कि महाराज इसमें लाभ क्या हुआ, एक अभिमान ज्यादा हो गया, वो कहने इसमें क्या बात है, कोई बात नहीं, मेरे मित्र थे, नहीं समझा सका। धन खराब नहीं है, धन का अभिमान खराब है, विद्या खराब नहीं है, विद्या का अभिमान खराब है, अभिमान होने से दुरुपयोग होता है। नहीं तो विद्या ददाति विनयम, विनया द्याति पात्रताम, पात्रता धर्मात्मा होती, धना धर्मम तथा सुखम। तो विद्या आती है तो वो विनय देता है, असली विद्या नम्रता देता है। भर्तृहरि ने कहा है यदा किंचिज्योऽहं दिपाइयो मदांध समभवम। जब मैं थोड़ा थोड़ा जानने लगा, शास्त्रों को पढ़ा, बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन किया, ऐसा किया, तब जैसे मतवाला हाथी होता है ऐसे मैं हो गया। मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ। योस्मि जवलिप्तम मम मनः, मन में अभिमान आया कि मैं सर्वज्ञ हूँ, बहुत जानकार हूँ, देखो कितनी बातें जानता हूँ, कोई आवश्यक मैं पर उत्तर दे देता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें जानता हूँ, बहुत लोग नहीं जानते उनसे मैं विशेष जानता हूँ, ऐसे में हो गया था। यदा किंचित किंचित बुद्धि जन सकाशाद अवगतम, फिर कोई अच्छे संत मिले, महात्मा मिले, वास्तु जानकार, उनका संग हुआ और उन संग का असर पड़ा, तदा मूर्खोस्मी ज्वर एवं मधो में व्यपगत, जैसे बुखार उतरे ऐसे वो घमंड मज्जा उतर गया और स्वस्थ हो गया, शांति मिल गई। ये बुखार है, एक बहुत बड़े व्याधि है, मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना समझता हूँ, मैंने इतना पढ़ लिया है, इतना मैंने समझ लिया, इतने याद है हमारे को, हमारी गीता याद है, क्या जानते हो आप? अभिमान है, अभिमान से पतन होता है, ज्ञान का भी अभिमान है। ये नेर विंदास विमुक्त माने न तो यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धि परम पदं ततो पतन तथो अनादृत युष्मदंग है। आपके चरणों का तो आदर किया नहीं और मैं बड़ा विद्वान हूँ, समझदार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा मानता है वो पतन थी अधा, उसका पतन होगा। तथा न ते माधव तावका जना, आपके जो जन हो गए उनका पतन नहीं होगा। त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया, आपसे रक्षित होकर निर्भय विचरते हैं। विनायका नीक पूर्दशु प्रभो, विनायक विघ्नों के विघ्न राज बड़े बड़े उनके मस्तक को पैर रख के चले जाते, परमात्मा प्राप्त कर लेते, उनका पतन नहीं होता। तो इन बातों से अभिमान बढ़ता है। ये लोग ज्यादा प्रशंसा करें ना तो ये बड़ी खतरनाक चीज है, अमर भी है, आफत है, हम क्या करें। लोग कहते मौत ठीक है, बहुत ठीक है, हमारे बहुत ठीक है। जो दूसरों को विद्वान और ठीक समझते हैं उन समझने वालों की उदारता है ये, और मनुष्य मान लेता है अपना गुण, अपनी विशेषता, ये भूल होती है यहाँ। देखो इतना हमारे वार में अच्छा कहते हैं, तो अच्छा कहते हैं दूसरों को, अच्छा कहने वाले ऊंचे दर्जे को होते हैं और अपने को अच्छा मानने वाला नीचे दर्जे को होता है। अभिमान होता है नहीं, मैं ठीक जानता हूँ, तुम क्या जानते हो, तुमने पूछा देखी नहीं, ध्यान पढ़ी है, समझे क्या जानते हो, उनका पतन होगा। तो ये अभिमान के लिए नहीं है विद्या, विद्या है उसका दुरुपयोग होता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य, साधो ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। विद्या है वो ज्ञान के लिए, धन है वो दान के लिए, और शक्ति है दूसरों की रक्षा करने के लिए, ये इसका सदुपयोग है। और विद्या विवाद है विवाद करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, क्या तुम समझते हो, दूसरों को हरा कर व्याधि हो जाए अपने। जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और क्या थे, रूप गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी बहुत बड़े विद्वान थे, नामी विद्वान, ये बड़े ही विद्वान थे नामी। जीव गोस्वामी ने व्याकरण बड़े हरिनामामृत व्याकरण बनाई है, देखने मालूम होता कि व्याकरण के ऊपर उनका अधिकार है, पुराण है, शास्त्र है, इनका सबके ऊपर उन्होंने लिखा है, पुराने के ऊपर लिखा है, तो इतने बड़े नामी विद्वान थे। भागवत प्रवृत्ति का लिखी, और पढ़ संस्कृत के बहुत नामी विद्वान थे, व्याकरण के ऊपर अधिकार था उनका। तो एक पंडित आया रूप गोस्वामी से शास्त्राकरण शास्त्रार्थ करने के लिए, जीव को परस्वामी छोटे थे तो उनसे मिल गए। कौन हो? मैं तो भाई रूप स्वामी का विद्यार्थी हूँ। तो उसको लटेर दिया, अच्छी तरह से हटा दिया उसको। तुम शास्त्रार्थ क्या करोगे? अब व्याकरण के ऊपर पूरा अधिकार जिसका है, कितने विद्वान पढ़ा हुआ क्या करेगा? ये पता लगा सनातन रूप को, उन्होंने निकाल दिया, निकल गया यहां से, हमारे यहां मत रहना। तो ऐसे अपमान कर रहा है विद्वानों का, ये कोई विद्या का फल है? निकल अभी का अभी यहां से। तो वृद्ध में फिर बेचारे टुकड़े बांध रहते थे, पढ़ते थे, बर्फ बीत गए, निकाल दिया उसको। तेने विद्यावान का अपमान कर दिया, विद्वान का। फिर उनके संप्रदाय में तीन बातें, जीवे दया और नामे रुचि, जीवे दया साधु संग, ये तीन। तो उन्होंने महाराज जीवे दया आपका उदाहरण है सिद्धांत, और जीव पर दया कहां करी आपने? जीव को निकाल दिया, जीवे दया आपके सिद्धांत की बात बत्ती नहीं, बात और नहीं जानते। फिर उसको अपनाया, जीव गोस्वामी बना हुई व्याकरण है, सुन देते अपन ठप से महाराज उसमें वामन गोपी राधा भ्योनुडामी, वामन गोपी राधा भ्योनुडामी सूत्र, सब पाणनीय के सूत्र जितने बड़े बड़े भगवान नाम के, ऋषु का नाम वामन लगाया, वामन वो छोटा है ना, छोटा वामन भगवान है, पुरुष का त्रिविक्रम, ऐसे भगवान का नाम लिया सब में, अक्षरों को सब अक्षर जितने हैं उन वर्णमाला का नाम अलग भगवान के नाम से। तो वामन मानो कृष्ण, नदी गंग नदी अंग संज्ञा है, वो गोपी संज्ञा है, टाबन तो होता है उसको राधा संज्ञा, राधा गोपी राधा, वो राधा संज्ञा उनकी गोपी संज्ञा। वामन वामन गोपी राधा दो नुडामी, हम पर मिठगा हो जाता है वामन और राधा गोपी से भगवान को भगवान का नाम
है। गोपी शब्द स्वयं अपने आप में नदी
संज्ञा
है ही।
हाँ नदी संज्ञा है, तो नदी संज्ञा क्या काम की? गोपी संज्ञा है, वो राधा संज्ञा है, तावन सब राधा संज्ञा है। आप कहते हैं आबंध है, वो कहते हैं राधांत है। उन्होंने ये अर्ध मात्रा लागवे मंजंदे भैया करना ये सिद्ध नहीं किया। हमारे नाम हमारे तो भगवान का नाम आना चाहिए। भगवान के नाम जपने वाले सज्जनों ने कहा कि हम व्याकरण पढ़े तो उसको गोखना पड़ता है, क्या याद करना पड़ता है, भगवान नाम छूट रहा है। कहे व्याकरण ही भगवान नाम के बना देंगे, खूब पढ़ो भगवान नाम ही नाम होगा। सब सब महाराज सुबंध त्रिगंध कृदंत सब गण प्रक्रिया सब बना दिया, तद्वैत कृदंत सब बना दिया भगवान नाम में। विलक्षण संज्ञा, बहुत विलक्षण देखा मैंने, बड़ा आश्चर्य आया, कितनी बुद्धि विलक्षण है, कितना व्याकरण पर अधिकार है स्वयं, ऐसे नामी विद्वान थे। और वृद्ध भाई वो टुकड़ा मांग कर खाते थे, कितने विरक्त, कितने त्यागी, कितने नामी विद्वान थे। तो विद्या ददाति विनयम, विद्या है विनय देती है, नम्रता देती है। जहां अभिमान आता है वहां पतन हो जाता है। आम फले नीचो ललेर इर्ण आकाश जाए, आम फलता है नीचे लड़ जाता है, इर्ण गया ऊपर, आम फले नीचो ललेर अरेन आकाश आ जाए और क्या
दुगरे
दुगरे दुगरे दुगरे दुगरे पार्टी घट 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 जाए अभिमान आता है अभिमान हम बड़े हो गए जहाँ पढ़ा पढ़ा विचार किया तो बड़ा अभिमान आता है लोग है ना श्रद्धालु इनका बड़ा खतरा है इनसे महाराज महाराज लंबे लंबे हाथ जोड़े महाराज डरना चाहिए राम 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 वो लिखा रहता है डेंजर लिखा रहता है सड़कों पर कहीं बिजली होती है उसको कहते हैं खतरा है भाई यहाँ तो ये महाराज महाराज लंबा लंबा हाथ जोड़े महाराज आप बड़े हो फूंक भर ही देते बापा जी कुप हो जाएगी थी हम तो बड़े हो गए इतना आदमी बड़े मानते हैं ना बोटों का जमाना ज्यादा बोट रहा है बोट का जमाने का तात्पर्य मूर्खता की प्रधानता ज्यादा संख्या में मूर्ख ही होते हैं मूर्खता की प्रधानता है विद्वान की नहीं आज यही बात है देखो तमाशा क्या हो रहा है इस वास्ते भाई अपने तो विद्वान क्या है विद्वान वो ही जो परमात्मा की प्राप्ति कर ले जागृति को वा सरसद विवेकी शेते सुखं कष्ट समाधि जागता कौन है सत असत का विवेक वो जागता है सब मोहित है परे हैं नींद में विद्या वही है जो को कल्याण करे अरे पतन करे वो तो अविद्या है विद्या के नाम की अविद्या है वो बड़ी पतन करने यहाँ प्रबंध करता है उनसे पहले बात करो उन्हें हुक्म दे फिर बोलो मेरे को थोड़ा ही अधिकार है मैं तो बोलने लग जाता हूँ समय देते इसमें बोलना है बोल देंगे नारायण 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 बोलो आप पूछो नारायण आवाज पूछने का समय है
व्यक्तिगत अभिमान बताया था उसकी खुलासा के लिए क्या कर गए हैं वो
ये बोलने के लिए नहीं कह गए थे इनका भी तो व्यक्तिगत बात चली थी ना कि अपना व्यक्तित्व कायम रहता है अपनी मुक्ति चाहने में भी अपना व्यक्तिगत व्यक्तित्व कायम रहता है उसके खुलासा के लिए पूछा था उन्होंने और कहने के लिए नहीं कहा था कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ ये नहीं कह
सकता
ऐसा उनका भाव ये था कि मैं मेरी मुक्ति हो जाए या अहम ब्रह्मास्मि यहाँ भी तुम्हारा व्यक्तित्व है इसका वो विश्लेषण चाहते थे कि यहाँ व्यक्तित्व कैसे है वो समझने के लिए पूछ रहे थे तो कोई कहने के लिए नहीं आए थे
अच्छा मैंने समझा व्याख्यान देने लिया है तो क्या था उनके ना
ये था कि मेरी मुक्ति हो जाए इसमें भी आपने अपना व्यक्तित्व बताया है
हाँ।
वो कैसे है व्यक्तित्व उसका थोड़ा खुलासा चाहिए
मानो मेरा कल्याण हो जाए ये अपना व्यक्ति हुआ ना एक हुआ ना एक मेरा कल्याण हो जाए तो मैं मुक्त हो जाऊं दूसरा हो नहीं हो परवाह नहीं तो व्यक्ति तो और क्या मैं धनवान बन जाऊं दूसरे चाहे कंगले हो जाए मैं विद्वान बन जाऊं दूसरे चाहे मूर्ख रह जाए मैं बलवान बन जाऊं चाहे दूसरे निर्बल रहे ऐसे मेरी मुक्ति हो जाए तो व्यक्तित्व हुआ ना तो मेरी मुक्ति हो जाए इस भाव से मुक्ति देरी से होगी करना करता रहेगा साधन तो नहीं कल्याण कृतकस्त दुर्गति तात गति कल्याणकारी काम करने वाले की दुर्गति नहीं होती सदगति होती है पर मेरी मुक्ति हो जाए ये भाव रहने से जल्दी मुक्ति नहीं होगी क्योंकि सामान्य चेतन प्राप्ति कैसे, आप बताओ मुक्ति में सामान्य चेतन में स्थिति होती है कि नहीं? सामान्य ब्रह्म है, एक विशेष, एक विशेष कल्पित है, एक सामान्य है, ये भेद मानते हैं नहीं वेदांत? तो सामान्य चेतन में स्थिति कैसे होगी बताओ, आप बताओ। मेरा कल्याण हो जाए तो ब्रह्म में स्थिति कैसे होगी, शरीर में स्थिति होगी? अब विचार करो। तो व्यक्तित्व तो कैसे होगा कि मेरा कल्याण हो जाए तो मेरा पना तो व्यक्ति को लेकर के ही है और शरीर को लेकर के नहीं है, क्योंकि क्षितिजल पाग मैंने व्याख्या कर दी इसकी कि स्थूल शरीर की स्थूल सृष्टि के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म सृष्टि के साथ एकता है, कारण शरीर की कारण सृष्टि के साथ एकता है और स्वयं की सच्चिदानंद परमात्मा के साथ एकता है। तो स्वयं अपनी परमात्मा के साथ एकता है, जब व्यक्तित्व को मुख्यता देगा तो सामान्य चेतन में स्थिति कैसे होगी, आप बताओ। ये होता है, चूड़ी चाट दी, अपने काम करो, चूड़ी बाजती रहेगी, चूड़ी चढ़ा दी, बोलो। ये क्या होता है, ये प्रश्न खुद का नहीं है, खुद का प्रश्न होता है तो उत्तर सुनने के लिए भूख होती है, उसको उत्तर सुनने के लिए वो दूसरी बात नहीं कर सकता, प्रश्न कर लेते हैं। हाँ, तो बहुत काम पड़ा, कभी कभी तो मैं लड़ लेता हूँ, वो पूछता है तुम सुनो, दूसरा सुने गए नहीं सुने, तुम्हारे सुनना तुम्हें सुनना पड़ेगा, क्यों पूछा मेरे को, धमका तुम सब, आपने प्रश्न कर लिया आप बात नहीं करते हो, कोई हक नहीं है आपको, अधिकार नहीं है दूसरी बात करने का, मेरी बात सुनो, अगर प्रश्न करते हो, कभी कभी लग लेता हूँ छोड़ देता हूँ जाने का, अपने क्या है, उसने प्रश्न किया हम उत्तर देंगे, किसी का प्रश्न होगा उसे उत्तर हो जाएगा, ऐसे काम चलाते हैं भाई हम तो। बहुत विलक्षण बात है। तो व्यक्ति तो समझ में आया कि नहीं, स्थूल शरीरों की एकता है कि नहीं, सूक्ष्म शरीर की एकता, कारण शरीरों की एकता और तत्व की एकता, फिर एक देशी पना कैसे रहेगा, किस बात को लेकर के है, स्थूल शरीर को लेकर है, सूक्ष्म शरीर को लेकर है, कारण शरीर को लेकर है, स्वरूप को लेकर के है, किस बात को लेकर एक देशी पना है, तो मूर्खता को लेकर के है। ये बात समझ में नहीं आती, सभी अपना कल्याण चाहते हैं ना, तो अपने को धनी होना चाहते हैं, अपने को विद्वान होना चाहते हैं, अपने को बलवान होना चाहते हैं, ऐसे अपनी मुक्ति चाहते हैं, ये ख्याल ही नहीं है कि मुक्ति में मैंपन कैसे रहेगा, निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति, और अपना अभ्यास करे तो अहंकार छूटेगा कैसे, अहंकार है मन बुद्धि है, अभ्यास करेगा तो अभ्यास से भाई बहनों ने माने का कल्याण होगा, अभ्यास से कल्याण नहीं होता, अभ्यास से एक नई अवस्था बनती है, पहली अवस्था है उसकी अपेक्षा अभ्यास करते करते नई अवस्था पैदा हो जाएगी, मैंने अवस्था आती तो तत्व कैसे मिलेगा, अभ्यास से, अभ्यास में स्थूल शरीर सूक्ष्म कारण शरीर की सहायता लेनी पड़ती है, तो सहायता जिसने देगा उसका त्याग कैसे करेगा, वो तो सहायता करने वाली चीज है, अरे उसका त्याग करेगा तो उसका सहारा क्या है, और जिसका सहारा है उसे त्याग कैसे करेगा, मन बुद्धि आदि लिए बिना कैसे अभ्यास करेगा, तो जड़ता के सहारे से अभ्यास होता है, तो अभ्यास वो जड़ता का त्याग नहीं कर सकता, अभ्यास अभ्यास एक नई अवस्था बन जाती है, पहले एक स्थिति और तरह की है, जैसे रस्से पर चलता है नट तो दूसरे नहीं चल सकते, वो चल सकता है, तो अभ्यास एक नई अवस्था बनी, क्या महाराज,
तो व्यक्तिगत है मोक्ष की बात है सब कुछ है।
मैंने सुना नहीं, मैं इसको बांटने में लग गया। क्या कहा आपने?
हाँ, अनेक जन्म संसिद्ध, ये जो अर्थ है अनेक जन्म होने से कल्याण होगा, तो ये तो हमारे पक्ष को सिद्ध कर रहा है।
पर जो साधना की है उस साधना की सिद्धि के लिए ही अनेक जन्म संसिद्ध कहा है, वो क्या हम ऐसा अर्थ मान रहे हैं इसका?
ऐसा अर्थ नहीं है। ये छठे अध्याय का प्रश्न है, ये श्लोक है। तो अनेक जन्म संसिद्ध का अर्थ योग भ्रष्ट पुरुष के लिए है, हरेक के लिए है ही नहीं। एक जो योग भ्रष्ट हो गया, साधन करते करते अंत में स्थिति ठीक नहीं रही और बीच में मर गया, तो उसकी क्या दशा होती है? उसकी दशा के वर्णन में दो तरह का उत्तर दिया है। एक स्वर्ग में जाकर के यहाँ श्रीमान गर्भ जन्म लेता है, एक योगियों के कुल में जन्म लेता है। दो तरह के होते हैं योग भ्रष्ट। तो अभी वहाँ प्रयत्न करेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। क्यों? कि इस जन्म का भी उसका उद्योग है और पहले जन्म का भी योग भ्रष्ट हुआ है तो उद्योग है, तो अनेक जन्म से सिद्ध है वो, मानो पहले से सिद्ध है, इससे भी सिद्ध है, इस बात से परम गति को प्राप्त हो जाता है। अनेक जन्म का ये अर्थ है। व्यक्ति की बात है तो अनेक जन्म सिद्ध व्यक्ति की है जरूर, पर एक जन्म अनेक जन्म क्यों हुए? व्यक्ति बनने से तो अनेक जन्म हुए। ये मैं तो कहते तो मेरे पक्ष को ही सिद्ध करता है। हमारा पक्ष सिद्ध करता है। अनेक जन्म क्यों हुए? व्यक्ति तो था तभी तो अनेक जन्म हुए, नहीं अनेक जन्म होने की जरूरत क्या थी? बताओ,
समझ में आ गया ना?
नहीं समझ में आया। मानो परमात्मा तत्व की प्राप्ति महाराज इतनी देर में हो जाए, इतनी देर में उसके जन्म की क्या जरूरत है?
मेरा प्रश्न ये है स्वामी जी, कि वो जो मोक्ष होता है, वो मुक्ति होती है, वो व्यक्तिगत आत्मा की होती है या आत्मा का बहुत्व होता है या एकत्व होता है?
बहुत ही एकत्व है, एकत्व ही बहुत है।
समझ गए?
एकत्व ही बहुत्व है, बहुत्व ही एकत्व है। वहाँ मानो संसार मात्र में जो परिपूर्ण परमात्मा है उसके साथ एकता होती है, तो एकत्व ही बहुत है, वो सबके साथ हो, और बहुत ही एकत्व है, बहुत है वही एक है, और एक है वही बहु है, यहाँ भेद नहीं है एक और बहु का।
इसीलिए अपने मेरी मुक्ति हो जाए ऐसा प्रार्थना करना ठीक नहीं है।
ठीक नहीं, नहीं कहता हूँ मैं, देर से होगी। कभी ज्ञान होगा कि मैं एक देशी मुक्ति क्या रहे, मुक्ति तो सर्वदेशी स्वतः देश काल वस्तु व्यक्ति से अतीत तत्व है, उससे मुक्ति होगी तो व्यक्ति की मुक्ति कैसे होगी, ये बोध होगा उसको। तो व्यक्ति है वो अनेक जन्म से, तो अनेक जन्मों तक सिद्ध हुआ, तो ये कारण क्या? व्यक्तित्व तो बाद हुआ उसमें। अगर व्यक्तित्व नहीं होता तो दूसरे जन्म जितनी जरूरत क्या थी?
कल जो मैंने आपसे प्रश्न किया था कि
ये तो हो गया ना पहले, ये
प्रश्न मुक्तावस्था में भगवान के साथ सख्य भाव रहता है तो आत्मा का व्यक्तित्व वहाँ
वो भगवत्कृत व्यक्तित्व है। हम अपने को कल्याण कर लेंगे ये व्यक्तित्व नहीं है, वो भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान की इच्छा से व्यक्तित्व है वहाँ, और व्यक्तित्व अभिमान नहीं है। एकाकी नरम थे, भगवान के एकाले का मन नहीं लगा, तब दूसरी सृष्टि के दूसरी के लिए खेल के लिए, और इसने अपना मान लिया अभिमान, अपने अभिमान कर लिया, सो बंद गया। मानो हम एक ही अनेक रूप होकर के खेल करें, ऐसे अनेक रूप से बने, जो अनेक रूप बनने वालों में श्री जी भी बनी तो श्री जी को ये भ्रम नहीं हुआ, इस वास्ते वो तो भगवान की प्यारी हो गई, जिसको अभिमान हो गया अलग हो गए, न्यारे हो गए, वे प्यारे वे न्यारे। अरे फुटबॉल का खेल खेलते हैं तो फुटबॉल खेलने के लिए है, किसी के व्यक्ति किसी के कब्जे करने के लिए है क्या? कोई ले उठा चल दे कहते, तो सबके खेलने की चीज है, तो सबके खेलने की चीज है, उसको व्यक्तित्व मान लिया, पकड़ लिया, बंद किया, फंस गया, सब ये आनंद की बात है। तो आप श्रद्धा करें, मैंने तो पहले ही कह दिया ऐसे ऐसे पंडित भी नहीं समझ सकेंगे, जिन्होंने कह रहा विचार किया वही समझेंगे, पंडित बहुत नामी शास्त्री पंडित भी समझ नहीं सकेंगे, मैंने पहले कह दिया विद्वत्ता से बात समझ नहीं आती, गहरा उतर कर समझो तो अभी समझ दो, अभी समझ लोगे। मुक्ति होने पर जो वैष्णवों की मुक्ति होती है वो भगवान के अधीन होते, अपना व्यक्तित्व नहीं होता है वहां, पहले उपासना में भी करी गोपाल की सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई, झूठो नहीं अति झूठो है सोई, करी गोपाल की हो तो गोपाल में अपने आप को मिला देता है, भगवत भक्त गोपाल में मिलाता है अपने को, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मैं भगवान में मिलता है, और भगवान में अभिमान होता नहीं तो उसके एक देह का अभिमान एक देश का अभिमान नहीं होगा। तो भगवान के जितने भक्त होते हैं वो भगवान की मर्जी से होते हैं, वो कारक वर्ग बन करके आएंगे तो दुनिया का उद्धार के लिए आएंगे, अपने लिए नहीं आएंगे, भगवान की मर्जी से ही। तो उनका व्यक्तित्व तो रहता, वो व्यक्तित्व भगवान की इच्छा के अनुसार है, अपने इच्छा अनुसार नहीं है, अरे अपनी इच्छा जब तक लगता है तब तक भगवान का भक्त नहीं होता, वो भोगों का भक्त होता है, अपने ही भक्त होता है। आजकल ये स्वयं सेवक होते हैं ना, ये स्वयं ही सेवक होते हैं, अपने ही परवाह नहीं करते, बीमार पड़ेंगे तो पिताजी तो स्वार्थी है, हम लोग दुनिया की सेवा करते हैं, स्वयं सेवक है तो वाह वाह अपने को मिले, तो स्वयं का ही सेवक है जयराम जी की, दुनिया की सेवा तो व्यम है, हम दुनिया की सेवा करते हैं। तो घर में पिता बीमार है क्या, तो पिताजी तो स्वार्थ है, हम परमार्थी हैं, तो दुनिया की सेवा करते हैं, दुनिया में वाह वाह मिले राजी हो जाते हैं, तो ये स्वयं सेवक है, स्वयं अपनी सेवा है। ये गहरी बात है, ये बात वहां है अटपटी झटपट लिखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। ऐसी बात है, व्यक्तित्व जो है ये ही टूटना चाहिए, खास करके भगवान ने कहा क्लेशो अधिक तरह तेषाम अव्यक्ता शक्ति से तेषाम अव्यक्ता ही गते दुखम देहवद विरवापते, देहधारियों के द्वारा अव्यक्त गति दुख से प्राप्त होती है, क्यों देहधारी है को होता है देह अभिमानी को, उनकी अव्यक्त गति बड़ी कठिनता से मिलती, जल्दी नहीं मिलती, क्यों देहाभिमान रहता है ना साथ में, भाई अभिमान है, ये अभिमान तो है तो प्रकृति का, और इसने अपना मान लिया, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मान्यते, मैं करता हूं ऐसा मान लेता है, इस बात पर फंस जाता है, मैं श्रवण करता हूं, मैं मनन करता हूं, मैं निध्यास करता हूं, मैं समाधि करता हूं, वो तो मैं पड़ जाती है।
मुक्ति का अधिकारी कौन है?
तो मुक्त होने वाला कौन है बताओ, आप बताओ मुक्त होने वाला कौन है? मुक्त कौन होता है? मुक्त अधिकारी जो संसार से संतप्त है वो है, प्यास लगने से रज का अधिकारी होता है, भूख लगने से अन्न का अधिकारी होता है, इससे संसार से संतप्त है, मन नहीं लगता तो वो अधिकारी होता है। बोलो, हम तो पूछते हैं ज्ञानी कौन है? ज्ञानी आज तक कोई नहीं हुआ, अभी तक कोई नहीं हुआ है ज्ञानी, और कोई नहीं होगा, और कोई ज्ञानी हो सकते ही नहीं। तो वो आपकी दल है, हम हमारी दल से फर्क क्या है?